खुदावंद की ताजीम हो और उसके फजल, उसके रहम, उसके शफकत भरे हाथ के लिए उसका शुक्र हो। आए एक बार फिर हम खुदावंद के हजूर झुकें और खामोशी में अपने अपने हालत की दिल का अपने हालत का अपने दिल की हालत का जायजा लेंगे। किसी तरह की अफसुर्दगी, किसी तरह की परेशानी, किसी तरह की भी कश्मकश हमारी सोच, हमारी रूह में, हमारे मुखालफ की तरफ से चलता हुआ कोई भी ऐसा तीर है, अपनी सारी तवज्जो को खुदावंद के तरफ लगाएंगे और अपने आप को उसके सपुर्द कर देंगे, अपने आप को खाली कर देंगे और बड़ी दलेरी और फरोतनी के साथ उसके तख्त के सामने आएंगे, क्योंकि वो मौजूदा वक्त में हमारी मदद करता है। उसका फजल, उसका रहम, उसका तर्स हर वक्त मुहैया है। सो इस बात को याद रखते हुए कि अब हम खुदावंद का कलाम सीखने के लिए जा रहे हैं, खामोशी में हर कोई खुदावंद से बात करे, ताकि आज जो कुछ भी उसके कलाम में से सीखें हमारी तरबियत और नसीहत के लिए हो। खुदा बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी जिंदगी बख्श कलाम के लिए, तेरी सच्चाई के लिए, तेरे मकाशफे के लिए, तेरी अल्लाही खुदाम खुदा पोशीदा बातों के लिए, जो खुदावंद तू दिन ब दिन हर रोज अपने रूहुल कुद्दस की खुदाम खुदा रहनुमाई में उस अच्छे मोहतबर मददगार की खुदाम खुदा रहनुमाई में क़ियादत में खुदाम खुदा हमें सिखाता है, तेरा शुक्र हो। खुदा बाप, आज जैसे ही तेरे कलाम में से हम सीखें, हम सबको बड़ी हिकमत और दनाई दे। कलीसिया में जो भी बीमार हैं, किसी तरह की मुश्किल का सामना कर रहे हैं, उन्हें खुदावंद संभाल। अपने मुल्क के लिए खुदावंद, मुल्क की बहाली के लिए, उस तारीखी के छाए हुए बादलों के लिए खुदावंद जो मुल्क पर छाए हुए हैं, खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए जो गुमराही और उदासी और इस दम तोड़ती हुई दुनिया में अपनी उम्मीद दुनिया की चीजों पर लगाए बैठे हैं, खुदावंद उनके दिलों को, सोचों को बदल और अपने बेटे बेटियों को इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। नए अहदनामा में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 19वां बाप, उसकी 11वीं आयत से 27वीं आयत की तमसील को हम देख रहे हैं, इसमें से सीख रहे हैं। हम 15वीं आयत से 26वीं आयत का जो मतालिया कर रहे हैं, इस मंजर को देख रहे हैं। मैंने आपको बड़ी वजाहत के साथ पहले खुदावंद के कलाम की बुनियाद पर और उसकी तहकीक करके रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में अच्छे तरीके से बयान किया है कि ये तीसरे आसमान का वाकया है जो यहां पर मंजरकशी के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह जाहिर कर रहा है कि हर एक ईमानदार जब उसके सामने उसके तख्त के पास खड़े होंगे तो उन्हें क्या दिया जाएगा, उनके कामों का बदला, उन्हें अजर, उन्हें इनाम दिया जाएगा। तख्त के सामने से मुराद यानी कि तीसरा आसमान। और हम सीख रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तीन आसमान हैं, ना के सात आसमान। हमने पिछले दिनों में पहले आसमान के बारे में देखा कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कौन सी ज़ाहरी चीजें हमें पहले आसमान पर नजर आती हैं, जिसमें से हमने पहली बात देखी थी हवा के परिंदे जो के फिजा के परिंदे भी कहलाते हैं, जिसे आसमान के परिंदे कहा जाता है, ये पहली बात हमने देखी थी। दूसरी बात हमने देखी थी आसमान से बारिश, आसमान पर बिजलियां का घड़कना, आसमान से बारिश होना। और तीसरी बात हमने देखी थी आसमान से ओस पड़ना। और हम आज इससे पहले कि हम दूसरे आसमान का मतालिया करें, मैं चाहता हूं कि हम पहले आसमान के बारे में थोड़ा सा और सीखें, ताकि आसान से आसान तरीके से हम जान सकें, ताकि जब बेशक आप आपके जहन में होगा कि हम क्यों पहले और दूसरे आसमान की बात कर रहे हैं, हालांकि इनामात तीसरे आसमान पर दिए जाएंगे। ये जरूरी है तल्लक के लिहाज से कि हम पहले और दूसरे आसमान से भी वाकिफ हों, ताकि जब आप किसी को कहें के बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तीन आसमान हैं, ना के सात आसमान हैं, तो फिर आप बड़ी वजाहत के साथ, दलेरी के साथ, बड़े भरोसे के साथ खुदा के कलाम के मुताबिक उन्हें जवाब देने वाले बने और लोग आपसे पूछेंगे। इसीलिए पूरी तवज्जो के साथ सुने ताकि रूहुल कुद्दस जो कुछ आप सुने रूहुल कुद्दस उसे जब जरूरत हो इस्तेमाल करे। सो पहला आसमान बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जिस पर हमने जाहरी तौर पर देखा था आसमान से क्या है, आसमान के परिंदे, और यही आसमान पर हम देखते हैं बिजलियां और बारिश पर, बिजली और बारिश यहां से होती है, यहां पर से बिजली की गर्जें हमें दिखती या सुनने में नजर आती हैं, और फिर आसमान से ओस पड़ती है। इससे पहले कि हम दूसरे आसमान के बारे में देखें, मैं चाहता हूं कि आप सब सीखें और हम जानें कि हमने पहले आसमान में कौन सी बातें देखी और क्यों क्यों जरूरत है कि हम इसके बारे में मुतालिया करें। जब हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक देखते हैं तो आसमान के लिए मुख्तलिफ लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं उर्दू जुबान में, इंग्लिश जुबान में, लेकिन हम उर्दू से सीख रहे हैं। आसमान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, हवा के परिंदे, फिजा के परिंदे और आसमान के परिंदे, ये हमें पहला जो के बात नजर आती है आसमान पर, और ये खुदावंद के कलाम में दर्ज है जिस पर हमने पहले सीखा था। हमने पदेश एक बाब 26वीं आयत में लफ्ज को देखा था आसमान के परिंदे, फिर पदेश एक बाब उसकी 28वीं और 30वीं आयत में हमने देखे थे जो दो अल्फाज हवा के परिंदे, फिर हमने पदेश दो बाब 19 और 20 आस में देखा था, आयत में देखा था 19वीं आयत में हमने देखा था कुल दस्ती जानवरों और हवा के परिंदों को खुदा ने क्या बनाया, मिट्टी से बनाया। फिर 20वीं आयत में हमने देखा था जब खुदा ने हवा के परिंदों यानी कि आसमान के परिंदों को मिट्टी से बनाया तो 20वीं आयत में खुदा ने आदम को क्या कहा कि तू इनके नाम रख, तो आदम ने आसमान के परिंदों के नाम रखे चुपाओं और दूसरे जानदारों के। फिर हमने पदेश उसका छठा बाब 7वीं आयत में लफ्ज देखा हवा के परिंदे, फिर हवा के परिंदों से मुराद या मतलब है आसमान के परिंदे, और ये पहले आसमान से मुतल्लिका बात हो रही है। जब भी आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें लफ्ज आसमान का या हवा के परिंदे या आसमानी मकामों का या खुदा के तख्त का, यहां पर खुदा तख्तोनशी हैं, तो तीन बातों को अपने जहन में रखें। जब आप पहले आसमान के बारे में सीख रहे हो तो याद रखें कि पहला आसमान जाहरी तौर पर हमें दिखाता है जहां पर बिजलियां गड़कती हैं, जहां से बादल बरसते हैं, बारिश होती है, जहां से ओस पड़ती है और जहां से क्या होता है, हवा के परिंदों को हम उड़ते हुए देखते हैं। ये है पहला आसमान, और जो हवाला जात मैंने आपके साथ बताए हैं ये परिंदे जो फिजा जमीन के ऊपर उड़ते हैं जिसे पहला आसमान कहा जाता है, और हमने पदेश में ये मुख्तलिफ हवाला जात देखे। पदेश 7 बाप उसकी 3 आयत में भी हवा के परिंदों का लफ्ज मिलता है, और इसीलिए यसुमसी आपको याद होगा मत्ती 6 बाप उसकी 26वीं आयत जब यसुमसी ईमानदारों से बात करते हुए नजर आता है, ये पहाड़ी वाज का वाक्या है, ये पहला पैगाम है जो यसुमसी पहाड़ी वाज दे रहा है, पहाड़ के ऊपर बात कर रहा है। वहां पर यसुमसी ने कहा कि फिक्र ना करो, अपने खाने पीने की फिक्र ना करो, हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं। उसका मतलब है आसमान के परिंदे जो के पहला आसमान है, उनको देखो जिन्हें मैंने बनाया है, जिन्हें मैंने पैदा किया है, मैं उनको खिलाता हूं, तुम किस बात की फिक्र करते हो। सो ये है पहला आसमान जहां पर आसमान पर क्या उड़ते हैं, परिंदे। फिर हमने देखा था दूसरा लफ्ज आसमान से बारिश होती है, और ये पहला आसमान है जहां से बारिश होती है, और बारिश के बारे में हमने सीखा था कि बारिश बहुत दफा खुदावन खुदा के तर्स, रहम, हमदर्दी, शफकत, मेहरबानी और फजल और खास अनायत को जाहर करती है। और इसके साथ साथ बारिश जो आसमान से है वो खुदा के गजब, गुस्सा और नाराजगी को भी जाहर करती है। और इसके बारे में हमने देखा था पजैश छठा बाप और उसका आठवां बाप, जहां पर नूह के दौर के वक्त उन गैर ईमानदार लोगों को जिन्होंने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में रद्द किया, तो खुदा ने गालबन मूसा की 120 साल की तबलीग के बाद जाकर उन्हें क्या किया, तबाहो बर्बाद किया, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में उस 120 साल के दरमियान खुदा का इनकार किया। और वो क्या है, आसमान से बारिश खुदा ने भेजी और वहां पर जो बारिश है वो खुदा के गजब को जाहर करती, खुदा की नाराजगी को जाहर करती नजर आती है, जिससे उस वक्त के उसने उन लोगों को हलाक किया जिन्होंने उसको क्या किया, इनकार किया। और फिर हम बारिश को देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि बारिश बरकत और उसके बाद गजब का भी इजहार है। हम देखते हैं कि पदेश ही 19वें बाप में लूत जब सदूम और मूरा में था तो आसमान से आग और गंधक की बारिश हुई। सो वहां पर भी बारिश जो खुदा के गजब को जाहर, नाराजगी को और उनके गुनाहों की सजा, उन्होंने भी उस वक्त के सदूम और मूरा के लोगों ने भी खुदावंत को अपनी जिंदगी में ना कहा और वो क्या हुए, हलाकत का शिकार हुए। और वहां पर जो आग और गंधक की बारिश है उन्हें क्या है, उसे वहां पर हम देखते हैं गजब और उनकी हलाकत का बायस। और फिर हम एक बार और देखते हैं मिस्र में जब फराउन ने खुदा के लोगों को कैद किया, उनको गुलाम बनाया और मूसा के कहने के मुताबिक उन्हें जाने नहीं दिया, तो मूसा ने अपना हाथ उठाया आसमान की तरफ, तो हम देखते हैं कि खरूज नौ बाप में, खरूज नौ बाप में हम देखते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि आसमान से क्या गिरे, बादल की गरजती हुई आवाज और ओले भेजे गए और उसके साथ आग बरसाई गई, लेकिन फरौन ने और उसके लोगों ने क्या किया, अपने दिलों को सख्त किया। मिस्र में, उसके बाद सदूम और उमूरा में और फिर नूह के दौर में, यहां पर इन तीन हवाला जात, बेशुमार हवाला जात हैं, लेकिन इन तीन हवाला जात की बुनियाद पर हम देखते हैं कि पहले आसमान से खुदा ने अपना क्या किया, नाराजगी और गजब का इजहार किया पानी के तूफान के बायस, यानी कि बारिश के तूफान के बायस, आग के तूफान के बायस, आग और गंधक के, और फिर औलों की सूरत में खुदा ने गरजती हुई बिजलियों और बादल की उस आवाज से मिस्र में अपना क्या किया, जलाल और अपना क्या किया, अजहार किया कि वो उनसे नाराज है क्योंकि वो उसके लोगों को सता रहे हैं। सो ये है आसमान से बारिश जो हमने तीन देखी हैं, तीन बातें खुदा के गजब को। लेकिन आसमान से बारिश बहुत दफा खुदा के फजल, रहम और तर्स को जाहर करती है। और हमने इसके बारे में देखा था कि बाइबल मुकद्दस अस्तिस्ना में जब हम देखते हैं उसका 28वां बाप, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें बारिश के बारे में, गजब के बारे में, जो है पदेश 6 बाप और साथ 6 से 8 बाप जो कि खुदा का गजब जाहर करता है, फिर हम आसमान पर देखते हैं पदेश 7 बाप उसकी 11 और 12 आयत, जो कि समंदर के सोते बंद किए गए, जो कि नूह के लहा से हवाला है। फिर उसके बाद पदेश 8 बाप, आसमान से जो बारिश हो रही थी वो बंद की गई जब लोग फना हो गए, सिर्फ और सिर्फ नूह का घराना और जो जानवर और चिंद परिंद और उड़ने वाले जितने से जो कश्ती में थे वो ही बचे, बाकी सब क्या हुए, फना हुए, उस वक्त हलाक हुए। फिर हम पदेश 19वां बाप उसकी 24-19 में पूरे बाप को देखते हैं, सदूम और मूरा का इलाका जहां पर आग और गंधक की झील बरसी। फिर खरूज 9 बाप 22वीं आयत से 35वीं आयत तक ओले, आग और आसमान से क्या, राद बरसी, यानी के बादल और गर्ज की आवाज गूंजी। सो ये तीन हवाला जात जो के गजब को जाहिर करते हैं। आसमान की बारिश ना कि सिर्फ खुदा के फजल को और खुदा के गजब को बल्कि खुदा के फजल, रहम, तर्स, मेहरबानी को भी जाहिर करती है, यानी कि उसका इंतजाम, उसका तैयार करदा इंतजाम, मुहैया करदा हुआ उसका फजल के बायस वो तोहफा, वो नेमतें। और बारिश को हम देखते हैं जब खुदा के रहम और तर्स को, हमने इसके बारे में मत्ती 5 बाप उसकी 45वीं आयत को देखा कि खुदा अपना सूरज नेकों बदों और अपना और नाराज़ और रास्त और नाराज़तों पर अपना मी बरसाता है। वहां पर हम देखते हैं ये खुदा का रहम है कि वो अपनी बारिश नाराज़तों और रास्तबाजों पर बरसाता है, ये खुदा का रहम है। और फिर बारिश को हम देखते हैं जो कि पहले आसमान से होती है, खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है, यानी कि आसमान जो उसने तैयार किया है, उसकी जो दस्तकारी है, उसमें उसने जो बारिश, उसने जो मौसम तैयार किए है वो इंसान की भलाई के लिए है, इंसान के लिए क्या है, फायदे के लिए तैयार किए है। और जब हम अस्तिस्ना 28वें बाप की 12वीं आयत को देखते हैं तो वहां पर खुदावंद का कलाम हमें कहता है, मेरे साथ इस आयत को देखें, पिछली दफा हमने इस आयत को नहीं पढ़ा था, 28वां बाप उसकी 12वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा के तेरे मुल्क में वक्त पर मी बरसे और वो तेरे सब कामों में जिन में तू हाथ लगाए बरकत देगा। यहां पर जो मी का बात हो रही है पहले आसमान से, यानी के मुल्क की पैदावार, आप जानते हैं कि बारिश के बगैर अच्छी सब्जी पैदा नहीं होती, बगैर बारिश के बगैर जमीन के अंदर उतना पानी नहीं होता कि वो अच्छी पैदावार दे। सो यहां पर खुदा कहता कि मैं अपने आसमान से जो अच्छी चीजों का खजाना है खोलूंगा, यानी कि बारिश बरसाऊंगा और वक्त पर मी बरसेगा। सो यहां पर भी हम खुदा के इंतजाम को देखते हैं बनीनु इंसान के लिए, उस वक्त के ईमानदारों के लिए। और 28वां बाप उसकी पहली आयत से हम जब 13वीं आयत तक पढ़ते हैं तो ये ईमानदार हैं जो उसके हुक्मों पर यानी कि उसकी तालीम पर अमल करते हैं, उनके लिए बरकात ही बरकात है। जो नहीं करते, वहां पर हम अगले हिस्सा में देखते हैं बहुत सी बीमारियां और बहुत सी बातें उस वक्त के दौर में जब मूसा ने ये क्या किया, बयान दिया। सो हम देखते हैं कि बारिश खुदा का क्या है, इंतजाम है बनीनु इंसान के लिए। फिर हमने जो बुनियादी हवाले से शुरू किया था ईमान, उसका 14वां बाप उसकी 17वीं आयत की बुनियाद पर जो के पहले आसमान के बारे में बात हो रही है। और आपको याद होगा कि 14वें बाप में ईमान जब पालूस और सिलास और उसके साथ जो उसके हम सफर लोग थे, जब उन्होंने एक लंगड़े को शफा दी तो लोग उसकी उनकी पूजा करने लगे जैसे खुदा की, और उसने कहा कि तुम क्या नहीं समझते, तुम बेसमझ हो कि हम तुम्हारी मानद ही इंसान हैं, हमारी नहीं बल्कि 17वीं आयत में कहता है कि उस खुदा को, उस खुदा की जिसकी हमने तुम्हें खुशखबरी दी है जो अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ता, उसने मेहरबानियां की और आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया और बड़ी बड़ी पैदावार के मौसम अता की और तुम्हारे दिलों को खुराक और खुशी से भर दिया। सो ये है दूसरी बात जो हम जाहरी तौर पर देखते हैं, आसमान से बारिश होती है और ये बारिश खुदा के रहम और तर्स और उसके इंतजाम को जाहिर करती है। फिर तीसरी बात जो देखते हैं वो है औस, यानी के शबनम, खुदावंद औस जिसे शबनम भी कहते हैं, ये ईमानदारों के लिए खुदावंद की देखभाल और निगेबानी का क्या है, मंसूबा और इंतजाम है। अगर जमीन पर सब्जियों पर औस ना पड़े तो हमारे पास औस के ना होने से सब्जी और अच्छी फसल नहीं होती। जब ओस जमीन पर पड़ती है तो सब्जियां पैदा होती हैं। और हम जानते हैं बाइबल मुकद्दस में बहुत से हवाला जात है। आपको याद होगा कि इजहाक के बेटे यकूब ने जब इजहाक को दगा दिया और दगे से वो बरकत पाई तो इजहाक ने उसको दवा दी और उसने क्या कहा था कि आसमान से बेशकीमती क्या हो, आसमान से तुझ पर औस पड़े। आप इसे देख सकते हैं पदेश 28वां बाप उसकी 27वां बाप उसकी 28वीं आयत में, पदेश के इस बाप में हम देख सकते हैं कि उसे उसने बरकत दी और कहा कि तुझ पर आसमान से औस पड़े और तेरे पास क्या हो, मैं और अनाज और बहुत सी सब्जी फरामानी के साथ हो। ये भी खुदा का इंतजाम है बनीनु इंसान के लिए। और फिर अस्तिसना 32वां बाप उसकी 13वीं आयत में हम आसमान से औस को देखते हैं, जो बेशकीमती अशिया जो के आसमान के खजाने में से बेशकीमती अशिया है जो के ईमानदारों को मुहैया है। फिर 20वीं आयत में भी सो ये है पहले आसमान की मंजरकशी जिसे हम देखते हैं, जहां पर हवा के परिंदे बारिश बजलियां गड़कती नजर आती हैं और जहां से औस पड़ती है। और आपको याद होगा कि बियाबान में जब बनी इसराइल कौम थी तो खुदा ने आसमान से औस और उसके साथ क्या बरसाया, मन बरसाया। ये है खुदा का बनीनु इंसान की मुश्किलों में इंतजाम, और वो आज भी अपने लोगों के लिए इसी तरह पर्दे के पीछे काम करता हुआ नजर आ रहा है। सो ये था वो बातें जो हमने कल सीखी, और उसमें से चंद एक और हवाला जात मैंने आपकी रहनुमाई के लिए आसानी के लिए जमा किए दर्ज किए ताकि आप की क्या हो अच्छे तरीके से वाकिफियत हो। सो दूसरे आसमान के बारे में जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो दूसरा आसमान मैंने आपको बताया ये वो आसमान है जहां पर शरारत की तमाम रूहानी फौजें अबलीस की बदरूहें उसके तमाम पैरवाई करने वाले क्या हैं, तमाम वो बदरूहें और फरिश्ते और वो लोग हैं, वो बदरूहें हैं जो दूसरे आसमान पर हैं। और पहले आसमान पर यानी के जमीन जो के जमीन पर उसके भी बहुत से लोग हैं जो के उसकी क्या करते हैं, पैरवी करते हैं ताकि उसके नाम को जलाल दें, ताकि अबलीस की क्या करें, पैरवी करें। हम इसके बीच में और गहरे पर नहीं जाएंगे आज, लेकिन कल खुदावंद के फजल से हम इस पर और गहरे से सीखेंगे कि दूसरा आसमान क्या है और उस पर क्या क्या होता है। आज हमने पहले आसमान को बड़े सादा से तौर पर देखा है और मैंने आपको सिखाया कि तीन आसमान हैं। पहला जिसके बारे में आपने देखा, जहां से बारिश, जहां पर हवा के परिंदे, जहां से बिजलियां गड़कती है और जहां से औस गिरती है, और दूसरा जहां पर शरारत की रूहानी फौजें बसी हुई हैं। और कल को हम देखेंगे कि वो फौजें कहां कहां पर हैं और क्या करती हैं। और तीसरा आसमान है जो लूका 19वां बाप उसकी 15वीं आयत के मुताबिक क्या है, हर एक को उसके काम के मुआफिक अजर दिया जाएगा। हम इनको जल्द ही मुकम्मल करके सीखेंगे कि वो अजर क्या हैं और वो अजर क्या हैं और किस तरह ईमानदार उनको हासिल करेंगे। ये है कि जो कुछ आज आप जमीन पर करते हैं आसमान पर आप उसका अजर पाएंगे पूरा पूरा, उसमें रत्ती भर भी खुदावंद क्या है, कोई भी क्या करेगा, बेईमानी नहीं करेगा बल्कि पूरा पूरा अजर देगा। और हम देखते हैं लूका 19वां बाप उसकी 11वीं आयत से 27वीं आयत का जो मंजर है जिसमें हमने बड़े ही वाजिया तौर पर देखा है, सीख रहे हैं कि यीशु मसीह के आने तक लेन देन करना है और ये है ईमानदारों की जिंदगी। और ये है वो जमीन पर रूहानी जंग जो हर रोज हम सामना करते हैं। याद रखें आप रूहुल कुद्दस का मकदस हैं, खुदा बाप आप में सुकूनत करता है, खुदा बेटा आप में सुकूनत करता है, खुदा रूह कुद्दस की मोहर आप पर है। आप इस दुनियावी दुनिया में ईमानदारों की बात कर रहा हूं, आप इस दुनियावी दुनिया में इस तरीके के जहां इस आखिरी जहां में इस शैतान की दुनिया में जिसे इस जहां का खुदा कहा गया है, हाकम कहा गया है, आप क्या हैं? खुदा का मकदस हैं और आप रूहानी मखलूक हैं, खुदा बाप और यीशु मसीह क्या मकदस और उसकी रास्तबाजी हैं, और उसके वापस आने तक ये वो जंग है जिसके बारे में सीखना जरूरी है। और इसीलिए मैंने ये हवाला जात आपके साथ शेयर किए हैं। पहले आसमान के बारे में आपको मालूमात दी है ताकि आप जानें। पहला आसमान जमीन के इर्द गिर्द जो फिजा है, जो आसमान है, इसे क्या कहा जाता है? पहला आसमान। और इबलीस जो के ये जमीन है, बाइबल मुकद्दस दूसरा करंथियों 4 बाप उसकी 4 आयत के मुताबिक इस जहां का खुदा उसे कहा जाता है, और वो चाहता है कि वो इस जमीन पर रहने वालों पर हुकूमत करे। वो उसके दिल की यही ख्वाहिश है कि वो हर एक को गुमराह करे, और आज उसने बहुत से लोगों को गुमराह किया हुआ है। किस लिए? क्योंकि हालांकि बहुत से ईमानदारों ने बाइबल मुकद्दस में अपनी जिंदगी को अनदेखा किया हुआ है। बाइबल मुकद्दस को हर रोज भूखों की तरह, जैसे भिखारी हर रोज ये ख्वाहिश रखता है कि वो अच्छा पैसा बनाए, ऐसे ही हमें भी रूहानी चीजों के लिए खुदावाप के उन भेतों के लिए, उसकी सच्चाइयों को जानने के लिए उसके हाजिर हुजूर हाजिर होने की जरूरत है, ताकि उन सच्चाइयों के पास आप मसीही जिंदगी को गुजारने वाले बने। जब तक वो खुदावंद नहीं आता, इस जमीन पर इस रूहानी जंग को लड़ें, और इस पहले आसमान और दूसरे आसमान की उस सारी कश्मकश को जो कि बाइबल मुकद्दस में हमें इसीलिए दी गई है। बेशक आपने पहले इसके बारे में नहीं सुना, पहले दूसरे और तीसरे आसमान के बारे में, लेकिन अब आप सीख रहे हैं तो उसको पूरी तवज्जो के साथ सीखें, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। और मैंने आपको एक बयान दिया था और बार बार उसे दूंगा, जो कुछ आप जमीन पर करते हैं आसमान पर, तीसरे आसमान पर खुदावन की हजूरी में उसके तख्ते अदालत के सामने उसका बदला पाएंगे, उसका अजर पाएंगे। अगर जिस्म के रौ से काम किया होगा तो जिस्म की फसल से क्या काटेंगे? कुछ भी नहीं। वो फसल जो जिस्म की ताकत से, यानी के सिर्फ जिस्मानी इंसानी रवैये से की होगी, इंसानी जोर से की होगी, पुरानी इंसानियत की कुवत में की होगी, उसका कोई अजर खुदावन नहीं देगा। और जो रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में, जिसमें के आप के दिल में यह है कि ख्वाह कुछ भी हो जाए, ख्वाह कोई कैसा भी हमें बुरा भला कहे, हम बाइबल को सीखेंगे और उनको माफ करेंगे और उनसे मोहब्बत करेंगे और मुसलसल तौर पर मसीह की पहचान में आगे बढ़ते हुए मोहब्बत का पैगाम पेश करेंगे। और आपने सीखा है कि जब तुम नाहक मेरे वास्ते सताए जाओगे तो तुम्हारा आसमान पर क्या है? अजर बड़ा है, और ये वही अजर है। इसलिए इससे पहले कि हम तीसरे आसमान पर पहुंचे, उसकी हजूरी में हाजिर हो, खुदा ने अपने कलाम में वाजिया तौर पर ईमानदारों को ये खबरनामा, ईमानदारों को ये मकाशफा, ये इतला दी है कि तुम क्या कुछ आसमान पर होगे। और हम आगे चलकर देखेंगे कि वो कौन से अजर है। जब हम लूका 19वें बाब को देखते हैं तो यहां पर जो अजर हम देखते हैं उनकी खिदमत के मुताबिक उनको क्या कहा है खुदावन ने कि शाबाश अच्छे नौकरो, क्या करो, एक को 10 शहरों पर हुकूमत करने का इख्तियार दिया, दूसरे को 5 पर। और ये ईमानदार हैं, ये ईमानदार वो ईमानदार नहीं जिन्होंने क्या कभी अपनी जिंदगी में मुश्किल का सामना नहीं किया? नहीं, ये वो ईमानदारों की तस्वीर है जिनमें आपकी भी शिनाख्त हो सकती है और आपकी शिनाख्त होनी चाहिए। ये वो दो ईमानदार जो कि बहुत से ईमानदारों को जाहिर करते हैं, जो दिन ब दिन हर रोज हर लम्हा अबलीस के झूठों फरेबों और उसके हर तरह के हटकंडों का सामना करते हैं, लेकिन याद रखें कि वो हम पर फाते नहीं हो सकता। आप मसीह में पहले ही फाते हैं। हमारा सिर्फ मकसद यह है कि उस फतह को जानना और इस जमीन पर रूहानी मखलूक की तरह अल्लाह ही कुदरत को इस्तेमाल करते हुए जीना है। यही आपका मकसद है, लेकिन ये आसान नहीं। इसके लिए उस कुशादा रास्ते से गुजरना जरूर है, उस वादी बुका जो के आंसुओं की वादी, जो के मातम की वादी है, ऐसी वादियों से भी हमारा गुजर होगा। और हमारे लिए बाइबल मुकद्दस में वादा है, खाब मौत के साया की वादी में से भी हमारा गुजर हो, हमें किसी बला से डर ना लगेगा, जर ना पहुंचेगा, क्योंकि उसका आशा और तसल्ली, आशा यानी कि उसका मुख्तारी, उसका हुक्म, उसकी कुव्वत, उसकी हफाजत, उसकी मुख्तारी हमारे ऊपर है। और ये क्या है, हम देखते हैं रूहुल कुद्दस की मोहर के कोई भी चीज आपके अंदर दाखिल नहीं हो सकती, आपको जर नहीं पहुंचा सकती। घबराने की जरूरत नहीं, ये हर रोज आप हालांकि नहीं जानते कि आपके गिर्द कितनी अबलीस की तस्वीरें आपको नाकाम करना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि आप झूठ बदी शहवत प्रस्ती नशा में और बहुत से जहनी रवैये के गुनाहों में गिरें। लेकिन इसका इंतजाम खुदा ने किया है कि जब मेरा रासबाज बंदा गिर पड़े तो मैं उसे फिर उठा खड़ा करूंगा। और इसका इंतजाम क्या है, अपने गुनाह का इकरार करना, उसे भूलकर उन तमाम गलतियों को पीछे छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। और ये है तीसरे आसमान का मंजर, यहां पर लूका 19:15-26 तक, जहां पर ईमानदारों को इनाम दिए जाएंगे और जहां पर ईमानदार बहुत से इनाम पाएंगे और बहुत से इनामों को खोएंगे। और ये किस लिए होगा, जो कुछ आप आज जमीन पर करते हैं आसमान पर उसका अजर पाएंगे, अब्दियत में उसकी अहमियत होगी। परेशान होने की जरूरत नहीं कि अगर आप चंद एक लोग ही बैठे हैं, मैं ईमान में कहता हूं अगर एक भी होता तो मैं यहां से खा दुनिया के किसी भी मुल्क में होता तो मैं बड़ी ही खुशी के साथ तालीम देने के लिए राजी होता, क्योंकि बाइबल मलाकी के सहीफा में कहती है जब ईमानदार जब खुदा तरस इकट्ठे होते हैं तो खुदा ऊपर से निगाह करता है और हर एक बात को अपनी किताब में लिखता है। क्यों वो लिखता है, आज आप जो कुछ भी करते हैं, रुपया पैसा देते हैं, अपना वक्त देते हैं, किसी के लिए हौसला अफजाई का काम करते हैं, चर्च में सफाई, कोई भी ऐसा भलाई का काम जो खुदावंद के लिए करते हैं, जो खुदावंद की रहनुमाई में रूहुल कुद्दस की ममूरी में समझ बूझ रखते हुए करते हैं, आप उसका अजर नहीं खोएंगे। पानी क्या चीज है, पानी का प्याला क्या चीज है, यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे नाम से मेरी खातिर किसी को एक ठंडा प्याला पानी रासबाज को पिलाएगा तो वो उसका अजर आसमान पर नहीं खोएगा। सो आपका हर एक लम्हा, आपकी जिंदगी बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि आपको बाइबल कहती है शाही काहिनों का फिरका, शाही एलची, आप कोई भिखारी नहीं बल्कि यीशु मसीह जो के आपके लिए गरीब बना ताकि आप दौलतमंद हो जाएं। और वो दौलत क्या है, वो दौलत वो शाहियत क्या है, आप शाही कहनों का फिरका है। बेशक आपकी दौलत आपको जाहरी तौर पर नजर नहीं आती, लेकिन वो रूहानी दौलत है। और अगर आप जिस्मानी दौलत को देखें तो याद करें कि कौन सा दिन है कि कब आप भूखे सोए हों, कौन सा दिन है कि कब खुदावंद आपकी जरूरतों में आपके जरूरत में उन जरूरतों को पूरा नहीं किया। सो यहां पर बात हो रही है रूहानी उन बरकतों को उन दौलत के खजानों की। आप सबसे बड़ा खजाना अपने अंदर रखते हैं और अभी तो ये थोड़ा सा है। यहां पर लिखा है जो थोड़े में वफादार रहा दयानदार निकला, अब तू उसे क्या कहा यीशु ने, 10 शहरों पर हुक्मरान हो, दूसरे को कहा 5 शहरों पर। सो परेशान मायूस और उदास और थका और उकता जाने की जरूरत नहीं कि अगर दुख उठा रहे हैं, और ये भी नहीं उकताने की कि जी भाई फैसल पहले आसमान के बारे में एक पैगाम पहले दिया अब फिर दे रहे हैं। जितना ज्यादा आप कलाम को सुनेंगे उतनी ही आपकी रूह में खुदा के कलाम का क्या होगा, जखीरा होगा, और रूहुल कुद्दस उसे इस्तेमाल करेगा जब उसे और आपको जरूरत होगी। सो आज हमने पहले आसमान के बारे में सीखा कि उसमें क्या क्या है। कल को हम सीखेंगे दूसरे आसमान के बारे में जहां पर शरारत की वो सारी रूहानी फौजें हैं जो के चाहती हैं कि ईमानदार नाकाम हो, ईमानदार नाकाम हो, ईमानदार उस अलाही कुदरत को इस्तेमाल ना करें, ईमानदार जिस मकसद के लिए पैदा किए गए हैं, आप जो मसीह में उसकी रासबाजी हैं, आप जो रूहानी हैं, आप जो उसमें कामल किए गए हैं, उस कामलियत उस पुख्तगी को हासिल करने की जरूरत है, और सिर्फ हासिल होगी कि उसके वापस आने तक लेन देन करना है। और वो लेन देन क्या है, बाइबल मुकद्दस का मतालिया, अपना वक्त, अपना रुपया पैसा, अपनी कुवत, अपनी सोच, अपने ढहते हुए उन तमाम हौसलों में, तरीकी के सारे रास्तों में यही कहना है, खा मौत के साया के भी वादी में से भी मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि खुदावंद का आशा और इत्मीनान और तसल्ली और उसका हाथ आपके ऊपर है, हालांकि वो आपके अंदर हैं। सो आए हम खुदावंद के हजूर झुकें और इस बात को याद रखें कि जो कुछ करें ये जान के करें कि खुदावंद के लिए करते हैं, ना के आदमियों के लिए, ना के आदमियों को खुश करने के लिए, क्योंकि मत्ती 5 के मुताबिक 6 के मुताबिक आदमियों को खुश करने वालों का कोई अजर नहीं है आसमान पर, लेकिन जो मसीह के लिए करता है उसको आसमान पर अजर मिलेगा। आए हम खुदा उनके हजूर चुके हैं। खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे कलाम के लिए, तेरी सच्चाई के लिए जो खुदा खुदा मौजूद है, और उन तमाम खुदा खुदा अजारों के लिए और जिरियों के लिए, अपने पास्टर साहबान के लिए जो उससे खुदावंद सच्चाइयां सीखने की मिलती हैं, ताकि जो लोग तूने मेरे सपुर्द किए हैं खुदावंद उन तक तेरा कलाम पहुंचाने वाला बनूं, ताकि जो कुछ इस जमीन पर बोऊं उसका अजर अब्दियत में हासिल करूं। तेरा शुक्र करता हूं तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग है और हर तरीके की राह में रोशनी बनता है। तेरा शुक्र हो, सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।